भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर रहते हैं वो अब भारत की चुनाव प्रक्रिया में शामिल होकर अपना मत दे सकते हैं और इसके लिए अब उन्हें वापस भारत जाकर मत देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का खुलासा किया भारतीय चुनाव आयोग के कमिश्नर डॉक्टर नसीम जैदी ने, जो यहां मेलबर्न आए हुए हैं। उन्होंने ये पूछने पर पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया।
हमारे चुनाव आयोग का ये मत है और ये हमारा विश्वास है कि हमारे इलेक्शन प्रोसेस में हर इंडियन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो रजिस्टर भी हो और वोट में भाग भी ले। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एक NRI बहुत बड़ा ग्रुप है जो बाहर रहते हैं, कंट्री के से बाहर रहते हैं विभिन्न उद्देश्यों से, उनको अगर हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से जोड़ सकें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि वो भी अपने कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन में भाग ले सकें। तो इसके लिए कुछ साल पहले कानूनी संशोधन किए गए थे, लेकिन उसमें एक कमी ये थी कि NRIs को वापस आना पड़ता था अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी में वोट डालने के लिए। तो अब हम लोगों ने आयोग में इस इशू को फिर से एग्जामिन किया और अब हम लोग ने ये रिकमेंड किया है लीगल संशोधन के लिए कि वन वे इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल फैसिलिटी हमारे NRIs को दी जाए, ताकि जैसे ही कैंडिडेट्स के नाम इलेक्शन प्रोसेस में फाइनल हों, हम वो नाम NRI को वन वे इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट के माध्यम से भेज दें और NRI उस पोस्टल बैलेट को मार्क करके जितनी जल्दी से जल्दी पोस्टल सिस्टम से हमारे आयोग में भेजेंगे और फिर वो रिटर्निंग ऑफिसर को चला जाएगा। हम ये भी एग्जामिन कर रहे हैं कि क्या हम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो हमारे एम्बेसीज वगैरह हैं वहाँ पर कोई पोस्टल बैलेट बॉक्स रखें, उसमें वो पोस्टल बैलेट्स इकट्ठे हो सकें। तो ये सब चीज़ें हमारे जहन में हैं, हमने लीगल अमेंडमेंट्स प्रपोज कर दिए हैं जिन पर विचार हो रहा है, हमने टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है जो सिक्योरिटी प्रूफ है और हमने ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी बना ली हैं। तो जैसे ही लीगल अमेंडमेंट होगा तो हम तैयार होंगे इसको रोल आउट करने के लिए।
तो जो NRIs हैं वो रजिस्टर किस तरह से करेंगे आपके सिस्टम में?
देखिए, अभी जो NRIs के लिए वो हमारे यहाँ अब तो हमने ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे दी है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है। अगर हमारे NRIs हमारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाके NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल जो वेबसाइट में दाएं हाथ पर है उसको क्लिक करें, वहाँ पर वो NRI में जा करके अपने आप को ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, वो पोस्टल सिस्टम से भी दर्ज करा सकते हैं और अगर वो अपने होम कंस्टिट्यूएंसी जा रहे हैं तो वहाँ पर पर्सनली दफ्तर में जाके भी दर्ज करा सकते हैं।
जब वो रजिस्टर कराएंगे तो उसके लिए आपका कोई चेकिंग प्रोसेस भी रहेगा कि वो सही इंसान है?
जी, उसके लिए प्रोसेस ये है कि उन्हें अपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी पड़ेगी उसमें और वो हमारे लिए पर्याप्त साक्ष्य माना जाएगा कि वो एप्लीकेशन भरें, पासपोर्ट की कॉपी लगाएं, वीज़ा जिसमें लगी हुई है उसकी कॉपी लगाएं और हम लोग उनको रजिस्टर करेंगे।
नैतिक तौर पर ये कितना महत्वपूर्ण है कि जो NRI जिन्होंने अपने देश को एक मुद्दत से छोड़ दिया हो लेकिन उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता अभी नहीं ली है कोई भी कारण से, जो अपने देश से इतने सालों से अलग हैं वो उसकी राजनीति का हिस्सा बनेंगे तो क्या सही तौर पर बन रहे हैं? नैतिकता को अगर ध्यान में रखें तो ये कहाँ तक सही लगता है?
देखिए, आयोग का तो मत ये है कि हमारा हर एक वोटर बहुत समझदार है और हम तो इसी पर विश्वास करके चलते हैं कि हमारा वोटर चाहे हिंदुस्तान में रह रहा हो या बाहर रह रहा हो बहुत समझदार है, बहुत रैशनल है और बहुत परिपक्व तरीके से फैसला लेगा। तो वो चाहे उसने अपना देश बहुत सालों से छोड़ रखा हो मगर हम उसके मैच्योरिटी और उसकी रैशनलिटी के ऊपर बिलीफ रखते हैं।
जी, अभी आपसे बात पहले हो ही रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में अभी चुनाव हुए हैं और आपने अपने हमारा जो भारत का सिस्टम है और यहाँ का कुछ फ़र्क हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ विभिन्नताएं लगी होंगी, कुछ अगर आप बताएं कि इनमें से आपको ऐसी क्या बात लगी जो शायद आप वहाँ वापस जाकर अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे?
देखिए, इनका जो सिस्टम है काफ़ी सिंपल है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्ट के ऊपर आधारित है, अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको एग्जामिन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। इनके यहाँ पोस्टल बैलेट का जो सिस्टम है, जो वोटर्स को एक इन्होंने ऑप्शन दिया है, वो एक अच्छा सिस्टम है कि वोटर्स को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले सकें, एक पोस्टल बैलेट फैसिलिटी को गौर किया जा सकता है कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरी के वोटर्स के लिए हमारे हमारे देश में। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे नोट किया है, अध्ययन किया है, तो कुछ टेक अवेज हैं जिनको हम विचार कर सकते हैं।
और जो वोटिंग अनिवार्य है यहाँ पर, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि भारत में क्या वो अनिवार्य वोटिंग नहीं हो सकती?
ये अनिवार्य वोटिंग का जो विषय है, ये हमारे यहाँ भी कभी कभी, हमारे देश में भी कभी कभी उठाया जाता है, मगर हमारे यहाँ ये मत है, यहाँ के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ मत यह है कि कंपल्शन का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आयोग ने ये वोटर एजुकेशन प्रोग्राम निकाला है, जिसमें हम चाहते हैं कि सोसाइटी के सभी लोग का रजिस्ट्रेशन बढ़ाएं, उनको वोटर पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करें। हम लोग सोसाइटी के सेगमेंट वाइज चलते हैं, वीमेन का पार्टिसिपेशन, यूथ का पार्टिसिपेशन, ट्रांसजेंडर्स, माइग्रेंट्स, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आए हैं। हमारे इस वोटर एजुकेशन प्रोग्राम में एथिकल वोटिंग पे बहुत जोर है, हम बच्चों को अपने करिकुलम में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे हैं, और पिछले 4-5 साल के जो इस कार्यक्रम के जो प्रभाव पड़े हैं बहुत अच्छे हैं। कुछ राज्यों में तो 94% तक वोटिंग हुई है बिना कंपल्शन के, क्योंकि हम लोग उन्हें प्रेरित कर सके, उनको ये कन्विंस कर सके कि उन्हें वोट डालना चाहिए। 80%, 85% तो आम बात हो गई है। और महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ा है, जो पहले महिला और पुरुषों के बीच में जो गैप होता था वोटिंग में, 1962 में 16% का गैप था, 2014 के इलेक्शन में 1.6% का ही डिफरेंस आया। तो वीमेन आर कमिंग फॉरवर्ड इन लार्ज नंबर, एंड दैट इज़ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव, जो वीमेन सफरेज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसका सपना साकार हो रहा है। तो हम समझते हैं हमारा वोटर एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ के कंपल्सरी वोटिंग का एक सॉल्यूशन है।
सुनने में आया था कि वहाँ पर एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल को बैन किया गया, प्रतिबंध लगाया गया, ऐसा क्यों हुआ?
देखिए, नहीं, हमारे यहाँ पे ओपिनियन पोल पे तो कोई प्रतिबंध अभी है नहीं, लेकिन आयोग का रिकमेंडेशन है कि ओपिनियन पोल को रोकना चाहिए, क्योंकि उससे लोग वोटर्स के मस्तिष्क पे असर पड़ता है, और फिर ओपिनियन पोल की जेन्युइननेस, ओपिनियन पोल की ऑथेंटिसिटी, कितने लोगों का इंटरव्यू किया, कहाँ किया, सही हुआ नहीं हुआ, कौन एजेंसी है, कोई उनके एफिलिएशंस तो नहीं है, ये सब चीज़ों को लेकर के हमने रिकमेंड कर रखा है कि ओपिनियन पोल्स को अलाउ नहीं करना चाहिए। मगर इसके विपरीत भी मत हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह, तो वो मामला विचाराधीन है। एक्सिट पोल 48 घंटे पहले बंद कर देते हैं, और इलेक्शन की वोटिंग के टाइम के आधे घंटे बाद ही एक्सिट पोल के बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जहाँ पे मल्टी फेज इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे 8-9 पोलिंग डेट होती है, तो उसमें किसी भी लास्ट पोलिंग डेट के आधा घंटे बाद ही एक्सिट पोल निकल सकता है। तो एक्सिट पोल प्रतिबंध करने का केवल यही एक उद्देश्य है कि जो वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं, वो पिछले अगर एक्सिट पोल का कुछ बताया गया है मीडिया में, उससे उनका माइंड प्रभावित ना हो, वो स्वतंत्र तरीके से अपना वोट डालने का अधिकार इस्तेमाल कर सकें।
हमारे SBS के हिंदी प्रोग्राम में जुड़ने के लिए डॉक्टर जैदी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया।
थैंक यू अनिता जी।